तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे सङ्गे मां शरणं। इसे गोविंद जी की, श्रीमती राधिका जी की विशेष कृपा से आज उनके समक्ष श्रीमद् भागवत कथा कुछ परिवेशन करने का मुझे सुयोग मिला है। गत वर्ष भी मैं इसी समय में आया था, बहुत मुझे लोगों ने स्नेह दिया, स्नेहपूर्वक मेरी कथा को सुना। आप लोग जानते हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर गोविंद जी, ये समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जितने भी अवतार निकले हैं, निकलेंगे, ये सब के मूल ये गोविंद जी ही हैं। ये अभी 5,500 वर्ष पहले मथुरा में कंस के कारागार में आविर्भूत हुए। वसुदेव कृष्ण मथुरा में कंस कारागार में प्रकट हुए, किंतु 16 वर्ष की उम्र जैसे सिर पर स्वर्ण मुकुट, वैजयंती माला, हाथों में शंख चक्र, गदा पद्म इत्यादि के साथ में प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए वहां वासुदेव कृष्ण नारायण तत्व। और गोकुल में नंद भवन में यशोदा के गर्भ से ये जन्म लिए। वहां पर सूतिका गृह है, मथुरा में स्थित का गृह नहीं, वहां पर बचपन की सारी मधुर लीलाएं हुई। मैया यशोदा ने इस पर ब्रह्म को ओखल में बांध दिया। इनके आवश्यकता पड़ने पर इनके कान भी उमेठे इस पर ब्रह्म के। मथुरा में ये सब लीलाएं नहीं हुई। इस प्रकार 11-12 वर्ष की उम्र तक ब्रज में लीला उन्होंने किए, रास इत्यादि लीलाएं हुई वहां। और लीलाओं के करने के बाद में पुनः कंस के प्रेरित दूत अक्रूर जी के द्वारा मथुरा में लाए गए और वहां उन्होंने चारुण मुष्टिक इत्यादि का तो वध किया ही, साथ साथ में उन्होंने कंस का भी उन्होंने बड़े सहज सरल तरीके से वध किया। वध करने पर वहीं पर उनका यज्ञोपवीत हुआ और गुरुगृह में वहीं से पढ़ने के लिए गए। वहां से लौटे ब्रज के उनके बिना ब्रज सूना पड़ा था। उद्धव को उन्होंने भेजा माता पिता और गोपियों की सांत्वना देने के लिए, किंतु गोपियों का ये विरहाग्नि और भी बढ़ गई। वो गए उसे शांत करने के लिए, किंतु वो शांत नहीं हुई, विरहाग्नि और भी बढ़ गई। जब वे मथुरा को छोड़कर के द्वारका में चले गए, मथुरा उजाड़ बन गई, वृंदावन भी उजड़ गया। गोप गोपियां ये कृष्ण की अप्राकृत लीला में, अप्रकट लीला में प्रवेश कर गई। कृष्ण मरे नहीं, गोपियां मरी नहीं, जोग माया ने किसी प्रकार से उनको अप्रकट लीला गोलोक गोकुल में उनको उपस्थित कर दिया। ब्रज भी सारा उजड़ गया। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं और उनके स्थल थे वो भी जंगल बन गए। वृंदावन कहाँ है, काम्यवन कहाँ है, मधुबन तालवन कहाँ है, इसकी कोई ऊपर से स्मृति नहीं रही। जब सब कुछ उजड़ गया और कृष्ण लीला भी महाभारत युद्ध के अनंतर ब्रज में मौसल लीला के द्वारा कृष्ण भी अप्राकृत लीला में प्रविष्ट हो गए, उनके सारे परिकर लोग भी हो गए। उस समय में उद्धव जी किसी प्रकार से ब्रज में आए और कुसुम सरोवर के निकट घास बन करके रहने लगे। परीक्षित महाराज जी ने देखा सारा ब्रज उजड़ गया, मथुरा भी उजड़ गई। किसी प्रकार से मथुरा में आए, कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी को साथ में ले आए, मथुरा का को फिर से बसाया और बसाने के बाद में वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। विभिन्न स्थानों से ब्राह्मणों को भी बसाया, व्यापारियों को भी बसाया, सब लोगों को बसा करके पुनः मथुरा स्थापित की गई। उनकी इच्छा थी कि कृष्ण के लीला के समय में उजड़ी हुई जो वृंदावन है उसको फिर से प्रकाश किया जाए। इसलिए नंद बाबा के पुरोहित और कुलगुरु सांडिल्य ऋषि को, गर्गाचार्य जी को चरणों में निवेदन किया वज्रनाभ जी, और उन लोगों ने उजड़ी हुई वृंदावन को फिर से बसाया। वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का विग्रह प्रकटित हुआ। गोवर्धन में हरिदेव जी को, जो गोवर्धन उठाया था, उनकी भी प्रतिष्ठा वज्रनाथ जी ने कराई। काम्यवन में कामेश्वर महादेव और सब विग्रहों की स्थापन की। जगह जगह में पावन सरोवर, कुसुम सरोवर इत्यादि सब नए नए सब कृष्ण की लीला स्मृतियों को जगाने के लिए इसकी स्थापना की गई। चरण पहाड़ी इत्यादि में कृष्ण के चरण चिन्ह भी प्रकाशित किए। फिर से वृंदावन को उन्होंने प्रकट किया। विशेष करके वृंदावन को प्रकट करने के लिए उनकी इच्छा हुई कि अपने कुल अधिदेवता जो कृष्ण हैं, इनकी कोई सुंदर कृष्ण जैसी ही मूर्ति मैं प्रकाश करूं। उन्होंने कलाकारों को, ब्राह्मण कलाकारों को आदेश दिया, कृष्ण जैसी ही मूर्ति ठीक प्रकाशित हो, किस प्रकार से त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और कैसा उनका सुंदर भव्य दिव्य उनका मुखारविंद है, उनका वस्त्रक्षल है और उनके चरण हैं, इसको तो ठीक से लाना होगा श्री विग्रह में। उस समय उनकी दादी जी, उनकी मां की सास, वो भी प्रकट थी। पहली जब मूर्ति बनी कृष्ण की बड़ी सुंदर खूबसूरत, तो दादी जी ने कहा इसके चरण तो ठीक वैसे ही हैं, चरण पर चरण रख करके रखे हुए हैं, किंतु उसके अन्य अंग जो हैं वो ठीक नहीं बने, वो ठीक नहीं बने हैं। उसकी बात सुनकर के बज्रनाथ जी ने आदेश दिया ये मूर्ति रख दी जाए, सुंदर कृष्ण जैसी मूर्ति बने जैसी हमारी दादी जी कह रही हैं। पहली जो मूर्ति बनी वो मदन मोहन जी हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए और वहां से जयपुर पधारे और जयपुर की राजकुमारी की शादी में जौतुक स्वरूप में, उपहार स्वरूप में वो मदन मोहन को अपने साथ ले गई। अब करौली में वो विराजमान है, वही गोविंद जी। दूसरी मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी, दादी जी बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु बोली इनका वस्त्र छल और बंसी जो धारण कर रहे हैं ये तो खूबसूरत हुआ है, इसको मैं खूब पहचान गई हूं, किंतु और अंगों को मैं नहीं पहचान गई। तो वो निराश हुए। वो मूर्ति कौन सी है? गोपीनाथ जी की है। पहले वृंदावन में रही 150 वर्ष तक गोविंद जी के साथ, जब गोविंद जी आए तो गोपीनाथ जी को भी यहाँ के महाराज ने उनको भी यहाँ लाया और वो गोपीनाथ जी अभी भी जयपुर में ही वहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर शाम को हम लोगों का प्रवचन होगा। अब उन्होंने तीसरी मूर्ति के लिए आदेश दिया, तीसरी मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी, देखकर कि उनकी दादी जी उछल पड़ी और उछल करके उनको आलिंगन पास में बद्ध कर लिया। बड़ी खूबसूरत इनका मुखारविंद मैं पहचान लूंगी, यही तो वो कृष्ण हैं, हमारे कुलादि देवता हैं। और वही मूर्ति हुई गोविंद जी। ये तीनों मूर्तियों को बज्रनाथ जी ने वृंदावन में ही पधराया, तीनों वहीं रही, बहुत दिनों तक वहां पर रही, 150 वर्ष तक रही। इसके बाद में बज्रनाथ जी के जाने के बाद में वो फिर कुछ ऐसा समय हुआ, जवनों का अत्याचार हुआ, काल जवन इत्यादि भी आए और उनके पुजारी लोग छोड़ करके इधर उधर भग गए और कालांतर में वो मूर्तियां भी जमीन के अंदर में दब गईं और जगत किससे अंतरहित हो गई। बहुत दिनों तक ऐसा रहा। इसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ये पधारे जगत में। कृष्ण की लीला के समय में उनकी तीन वांछाएं पूर्ण नहीं हुई थी, ये प्रेम के विषय हैं, रसो वैसह हैं, स्वयं रस स्वरूप हैं, तो भी द्वादश रस के विषय होकर के भी भक्तों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति भावना है, सेवा की भावना है, विशेष करके राधिका जी की, कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा है, जिससे श्रीमती राधिका जी पागल हो जाती हैं, दिव्योन्माद हो जाता है। और कृष्ण की जो माधुरियां हैं, विशेष करके वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी कृष्ण का है, वो सर्वोत्तम रूप में श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती हैं। हम लोग गोविंद जी का दर्शन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, किंतु चित्त द्रवित होकर के मूर्छित हो जाए ये सब चीजें नहीं होती। ब्रज में भी बहुत तरह के भक्त थे, कृष्ण के समय में भी। नंद बाबा यशोदा का भी कृष्ण के प्रति प्रेम तो था, किंतु राधिका जी के हृदय में महाभाव और उससे भी ऊपर मोदन, मोहन और मादन जो भाव था, जो राधिका है स्पेशल चीज है, वो कृष्ण में भी नहीं है। इस चीज को कृष्ण अनुभव नहीं कर सके। मैं राधिका को देख करके आनंद में भी भोर हो जाता हूं, किंतु मूर्छित नहीं होता। मैं तमाल को देख करके, जैसे या कदम्ब का वृक्ष देखकर राधा जी समझ करके उसका आलिंगन नहीं करता, और राधा जी तमाल का वृक्ष देख करके भी प्रेम में तन्मय होकर के विशुद्ध हो जाती है, दिव्य उन्माद हो जाता है, और उस वृक्ष को देख करके ही कृष्ण समझ करके आलिंगन करती हैं, उसे बोलती हैं, हंसती हैं, दिव्य श्रृंगार करती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में भी कृष्ण देखा है तो अद्भुत बात है। इनके अंदर में कुछ है, वो क्या है, क्या कौन सा भाव है इसलिए, और उन्हें देख करके कृष्ण को कैसा आनंद होता है इनको, कृष्ण इस चीज को नहीं समझ। राधा जी को देख करके, ब्रजवासियों को देख करके कृष्ण को क्या आनंद होता है ये तो अनुभूति है, किंतु राधिका जी के हृदय में कृष्ण को देख करके कौन कौन सा भाव उठता है, ये दिव्य उन्माद होता है, मूर्छित हो जाती हैं, और मूर्छावस्था में दिव्य उन्माद में हंसने लगती हैं, ये सब भाव कैसे होता है नहीं समझते। इसलिए राधा जी का भाव कौन सा भाव, यही मोदन मादन, अंत में मादन भाव लेकर चोरी करके, और राधिका का गौवर्ण लेकर के सखी नंदन गौधरी के रूप में, जब वो ब्रज में आए कृष्ण के भाव से वो एकदम मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को ब्रज में भेजा, यहाँ से गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन लुप्त हो गए हैं, वैष्णव आचार विचार भी लुप्त हो रहा है, कृष्ण की एकांत की भक्ति और विशेष करके राधा जी की एकांत की भक्ति, जिसकी भक्ति कृष्ण स्वयं करते हैं, गोविंद जी जगत के आराध्य हैं, किंतु इस गोविंद जी की भी कोई आराधना करते हैं किसी की, वो है श्रीमती राधिका, इसलिए उनका नाम है राधिका, कृष्ण आराधिका, कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, इसलिए ऋषिनाथन को भैया ब्रजता कितना लुप्त है उसे उद्धार। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर इत्यादि जो विग्रह हैं उनका पुनः प्रकाश किया गया, भक्ति के ग्रंथ नहीं है इसका भी विशेष करके श्रीमद भागवत ये जो ग्रंथ है अमर पुराण है वैष्णव, इसकी उनकी चीजें कक्षा होने लगी है कि तुम निर्धारी इत्यादि को भी किसी ने किस समक्ष में बैठाते हुए हैं, उनके आराध्य कृष्ण गोविंद जी ने उनके आराध्य को चामुंडारी धनी इत्यादि है, वो भागवत को उपयोग रक्षा कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा प्राणी की और उनकी तरफ की उपासना के लिए बतलाते हैं और मुक्ति को सबसे बड़ी बातें बतला रहे हैं, इसलिए श्रीमद भागवत की कोई भक्तियों पर रखा है। इसको पुष्टि करने के लिए कुछ ग्रंथ बने, आगे आप एक स्वामी सनातन गोस्वामी आए और आपने राज्य को उन्हें किया, सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी का पढ़ा था, मदन पंडित जी ने
यह और वो सीमा